सत्य तो ये है कि पूर्ण सत्य क्या है ये हम भी नहीं जानते, परंतु जो हमें पता है वो हम आपको बताते हैं। आपके पिताजी ने उस पैलेस की जमीनों पर काम लगा दिया था। आप तो देख ही रहे हैं, करीब 10 एकड़ की जमीन पर वो पूरा पैलेस है, और पूरा पैलेस एक चार दीवारी से घिरा हुआ है। एक टूटी हुई चार दीवारी थी, उन्होंने वहीं से तोड़ने का काम शुरू किया, परंतु जिस दिन काम लगाया था उस दिन आकाश से भी बहुत पानी बरसा था। ऐसा लगा था जैसे कि तूफान आया, बेवजह मौसम खराब हो गया था। जहां काम था वहीं पर रुक गया, मजदूर तितर बितर हो गए। ऐसी अनहोनी बरस रही थी जैसे कि बारिश थमने का नाम ही नहीं लेगी। अपने आप को बचाने के लिए मजदूर जाने अनजाने में महल की परिधि के भीतर ही दाखिल हो चुके थे, परंतु आपके पिताजी ने कुछ दूरी पर अपनी गाड़ी लगा रखी थी। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने महल में जाने से बेहतर अपनी गाड़ी में जाना ही सही समझा था कि किसी तरह से यहां से निकल सकेंगे, परंतु जाने अनजाने में शायद उनका एक पैर महल के भीतर चला गया था, या फिर महल की मिट्टी न जाने कैसे उनके जूते और कपड़ों से होती हुई उनके तन से चिपक चुकी थी, कुछ हाथों में लग गई थी। जो भी हो, परेशानी यहीं से शुरू हुई। जो मजदूर पैलेस के अंदर गए थे वो तो कभी बाहर नहीं आ सके, परंतु आपके पिता घर आकर स्नान किया पर फिर भी अपने आप को उस मिट्टी की गंध से मुक्त नहीं कर सके। एक अजीब ही बदबू उनके शरीर से आने लगी थी। आपकी माँ बहुत ही समझदार और हिम्मत वाली स्त्री हैं। सर्वप्रथम उन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया था। जब उन्होंने आपके पिताजी से इस बारे में बात की तो उन्होंने इसे हवा में उड़ा दिया। बारिश का मौसम है तो हर तरफ मिट्टी की सुगंध फैली ही है। अब आपको इस मिट्टी की सुगंध में नाली की बदबू आ रही है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। पर उस दिन से जो बारिश शुरू हुई थी कि वो लगभग 7 दिनों तक लगातार बारिश होती ही रह गई थी। अधिकतर लोग हैरान थे कि ये पूरी बारिश केवल उस पैलेस और उसके आसपास के क्षेत्र में ही हो रही थी, अर्थात कि पूरे प्रतापगढ़ में ही इस बारिश का कहर था और कहीं नहीं, जैसे कि कोई उत्सव मना रहा है। विशंभर मिश्रा बोल रहे थे, हाँ बारिश तो अच्छी चीज है ना, हम पानी के लिए इतना तरसते हैं तो ये तो शुभ शगुन हुआ। अभिमन्यु प्रताप बीच में टोकते हुए बोले, हाँ एक तरह से इसे कह सकते हैं, परंतु हमारे लिए पानी उतना ही अच्छा है जितने की आवश्यकता है। बादल फटने से भला नहीं होता। उन 7 दिनों में प्रतापगढ़ में इतनी भारी बारिश हुई थी जैसा कि कई साल का रुका हुआ पानी एक ही दिन आसमान से गिर रहा था। पहले के लोगों के घर मिट्टी के होते थे, इस बारिश में ना जाने कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग मिट्टी के घरों के नीचे दबकर मर गए। इस बारिश ने पूरे प्रतापगढ़ में तूफान मचा दिया था। कोई राहत कार्य भी नहीं हो सकता था क्योंकि पानी किसी को घर से निकलने दे ही नहीं रहा था, त्राही माम मच गया था। 8 दिनों के बाद जब मौसम खुद कुछ खुला तो आपके पिता महाराज अपनी रियासत की दशा देखने के लिए निकले थे। वो ही प्रतापगढ़ के कर्ता धरता थे तो सब कुछ उन्हें ही संभालना था। इसमें कोई शक नहीं कि बुंदेला परिवार के राणा शुरुआत से लेकर अब तक प्रजापालक और धर्मात्मा हैं। अपनी तरफ से उन्होंने बहुत कोशिश की, अपने खुद के खजाने का मुंह खोल दिया, जिससे प्रतापगढ़ के जनसामान्य का जीवन पुनः व्यवस्थित ढांचे पर आ गया था। पर इन सब चीजों के बीच में उन्होंने अपने ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो मिट्टी उनके शरीर से जहां जहां लगी थी वहां पर पहले फुंसी हुई, फिर फोड़े हुए और फिर घाव निकलने लग गया था। एक साधारण बरसाती फुंसी को समझकर उन्होंने इसे नजरअंदाज किया था, पर अब ये घाव विकराल रूप ले रहा था। उन्होंने डॉक्टरी इलाज भी करवाया पर कुछ फायदा ही नहीं हो रहा था। घाव सूखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोजाना नियमित रूप से उन्हें पट्टी होने के बावजूद भी उनमें अब कीड़े पड़ने लगे थे। शुरुआत के भाग पढ़े जब शत्रुपा देवी से सपने में अपने पति को देख रही हैं। आपकी माँ सा इन सब चीजों से विचलित हो रही थी, उनका हृदय बार बार इसे कुछ गलत कह रहा था। तब उन्होंने इस चीज के लिए अपने कुलगुरु से सलाह ली कि कहीं कोई एक टोटम टोटका तो नहीं है। जगदेव उस समय मुश्किल से 17 या 18 साल के थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने प्रतापगढ़ के राणा बुंदेला कुल के कुलगुरु पद का कार्यभार संभाला था। इस क्षेत्र में और नए नए आए थे, परंतु उनके पूर्व जन्म की सिद्धियां थी जो कि धीरे धीरे जागृत हो रही थी। वो आपके पिताजी को देखते ही समझ गए थे कि ये एक भारी तंत्र प्रयोग है और वो उनके बस की चीज नहीं है, जबकि आपके पिता इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। लेकिन जब डॉक्टर ने इस घाव के कारण उनके पैर और हाथ को काटने का परामर्श दिया, तब मजबूर होकर उन्हें अपने कुलगुरु की शरण लेनी पड़ी, अपनी पत्नी की बात को मनाना पड़ा। अब आप इसे सोच सकते हैं कि वो कितना भयंकर होगा। अपनी बात कहते हुए विशंभर मिश्रा ने अभिमन्यु प्रताप की तरफ देखा, जो कि बहुत ध्यान से एक एक बात सुन रहे थे। पिताजी की बीमारी के बारे में उनको जानकारी थी। उन्होंने सुना था कि पिताजी को एक्जिवा जैसी कोई बीमारी हो गई थी, पर उन सब चीजों के पीछे ये होगा उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। जानकारी होना तो बहुत दूर की बात थी। हर हर महादेव।